نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں سے ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں یہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے. ذیکات کا مہینہ سن 6 ہجری میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے اپنی ذات سے نہ صرف یہ کہ اس دور کے مسلمانوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع دیا بلکہ رہتی دنیا کے مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین قائد اور لیڈر ہونا ثابت کیا کہ ایسے حالات کہ جب کہ انسان حق پہ ہوتے ہوئے بھی اپنا حق چھوڑ دے بعد میں آنے والے وقت کے لیے کتنی خیر اور رحمت کا ذریعہ بنتا. ہم تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے اور پھر اس کے واقعات کو دیکھیں گے کہ کیا ہوا. سن 6 ہجری تک پہنچتے پہنچتے مسلمان مکہ سے مدینہ آئے ہوئے کچھ حد تک مدینہ میں سیٹل ڈاؤن ہو چکے تھے, لیکن آخر اپنا گھر تو سب کو یاد آتا ہے. لڑکی اپنے سسرال میں کتنی ہی خوش کیوں نہ ہو, لیکن میکہ تو میکہ ہی ہے. حالات مسلمانوں کے حق میں تھے, اب لگ رہا تھا کہ اسلام کی دعوت کو کامیابی اور فتح مل کے رہے گی. شروع شروع میں وہ لوگ جو اسلام کی طرف آتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ خوف کا شکار تھے کہ پتہ نہیں ہم ٹھیک جگہ جا بھی رہے ہیں کہ نہیں, اب ان کا کانفیڈنس ڈیولپ ہوا کہ نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گو کہ ایک نیا نام ایک نیا چہرہ ہیں, لیکن آپ کے پاس آنے والے وقت کے لیے بہت ہی بہترین رہنمائی حاصل ہے. مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہوئے 6 سال ہو چکے تھے. ایک قسم کا بائیکاٹ تھا, مسلمان مکہ میں حج عمرے کی ہی نیت سے کیوں نہ ہو نہیں جا سکتے تھے. وہ مکہ جہاں سے کسی کو نہیں کبھی روکا گیا, عربوں نے اپنی ہی روایات کے خلاف مسلمانوں کے لیے ایسے حالات بنا دیے تھے کہ دار الحرب کی کیفیت بن چکی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب حالات بدلنا چاہتا ہے نا تو یاد رکھیے سچے خواب دکھاتا ہے. ارویہ صالحہ نبیوں کے لیے تو یہ عام تھے, لیکن عام امتیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نبوت کا 46واں یعنی 46 پارٹ دے دیتا ہے کہ جب حالات بدلنے ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ خواب بھی آنے لگتے ہیں. اسی طرح کا ایک خواب اللہ کے نبی کو دکھایا گیا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے, آپ نے خانہ کعبہ کی چابی لی اور صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کیا. کچھ لوگوں نے سر کے بال منڈائے, کچھ نے کٹوانے پر ہی اپنے آپ کو روک لیا. اب یہ خواب کیا تھا, لوگوں کے سوئے ہوئے جذبات کو بھڑکانے والی بات تھی. اللہ کے نبی نے یہ خواب صحابہ کرام سے شیئر کیا, سب خوش ہوئے. انہوں نے اللہ کے نبی کی سچائی کو مانتے ہوئے یہ سوچ لیا کہ اب اس خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ ہم اس سال مکہ میں جائیں گے اور وہاں عمرہ ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی اس خواب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی ایک قسم سمجھتے ہوئے تیاری کی دعوت دی کہ آپ سب تیار ہوں, جو بھی ساتھ جانا چاہے وہ جا سکتے ہیں. اعلان ہوا نہ صرف یہ کہ مدینہ میں بلکہ ارد گرد کی آبادیوں میں بھی یہ اعلان ہوا کہ لوگ آپ کے ساتھ جائیں. کچھ عرب لوگ تھے, یعنی عربی جو تھوڑے سے ذہنی پختگی میں پیچھے ہوتے ہیں, انہوں نے تھوڑا سا اعراض کیا کیونکہ بالآخر دشمن کے ملک میں جانا چاہے وہ عبادت ہی کی غرض سے ہو یہ ہر ایک کے حوصلے کی بات نہیں ہوتی. اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ کرام تیار ہو گئے. آپ نے اپنے کپڑے بدلے یعنی صاف ستھرے کپڑے پہنے, اپنے پیچھے ابن ام مکتوم کو یا پھر نمیلہ لیسی کو اپنا جانشین چھوڑا. یہ بھی ایک سنت بہت پیاری ملی کہ جب بھی آپ کہیں جائیں اپنی جگہ سے ہٹیں تو اپنے پیچھے کسی نہ کسی کو اس کام کی ذمہ داری دے دیجئے. قصوہ نام کی اونٹنی پر سوار ہوئے. یکم ذیقعد سن 6 ہجری دوشنبے کا دن تھا. آپ کے ساتھ اس سفر میں آپ کی بیویوں میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھی, کیونکہ آپ کی عادت مبارک تھی کہ جب بھی کوئی سفر ہوتا تو آپ قرآن دازی کرتے اور اپنی بیویوں میں سے جس کا نام آتا اس کو لے کر جاتے. 1400 اور بعض کہتے ہیں کہ تقریباً 1500 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے. آپ نے سفر کے دوران جو راستے میں جانوروں اور چوروں لٹیروں سے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کچھ ہتھیار رکھنے ہوتے تھے وہ اندر رکھے, لیکن نہ تو اسلحے کا اظہار کیا اس دور کے مطابق اور نہ سج سمر کے نکلے کہ جس طرح کے وہ کسی جنگ پہ جا رہے ہیں. آپ کا رخ مکہ کی طرف تھا. ذوالخلیفہ وہ جگہ ہے جہاں سے مدینہ سے آنے والے احرام باندھتے ہیں. وہ جانور جسے حج عمرہ کرنے والے مکہ یا منا میں ذبح کرتے ہیں اس کو ہدی کہتے ہیں. آپ نے اس کو قلادہ پہنایا,
कोहान चीर कर निशान बनाया, यानी उसकी कोहान में थोड़ा सा एक निशान लगाते थे तो उसका जो खून निकलता था उसको मल देते थे, जो इस बात की अलामत होती थी कि अब इस जानवर से कोई शख्स फ़ायदा ना उठाए, ना इसको पकड़े ना ले, क्योंकि ये अब अल्लाह के रास्ते में ज़िबा होगा। पहले से ये चीज़ चूँकि थी तो इस्लाम ने इसको बाकी रखा। आपने उम्रे का अहराम बांधा ताकि लोगों को इत्मीनान रहे कि आप जंग नहीं करेंगे। और आप देखिए कि आज भी मदीना से मक्का आते हुए इंसान थक जाता है, 4, 5, 6 घंटे लग जाते हैं बाज़ अवक़ात, लेकिन उस दौर में तो आप देखिए ऊँटों पे बैठना और सब कुछ, और इतनी पहले से अहराम बांध लेना, उसकी पाबंदियों को सामने रखना, हकीकत में जान जोखों का काम था, लेकिन खुशी इतनी थी कि अल्लाह के नबी के साथ सहाबा कराम ये काम करते रहे। आगे आगे आपने कबीला खुजाया के एक जासूस को भेजा ताकि वो देखे कि कुरैश आपके आने को किस तरह से लेते हैं। असफान के मुकाम पर पहुंचे तो जासूस ने इत्तला दी कि मैं काब बिन लुई कबीले को इस हालत में छोड़ आया हूँ कि उन्होंने आपसे मुकाबले के लिए मुख्तलिफ गिरोहों को जमा कर लिया और अपने साथियों को जमा करना शुरू कर दिया, फौजें जमा हो गई हैं और वो आपसे लड़ने और आपको बैतुल्ला से रोकने का इरादा किए हैं। अल्लाह के नबी ने इस बात को सुनने के बाद सहाबा कराम से मशवरा किया, ये भी एक खूबसूरत अमल है कि कोई भी काम हो अपनी टीम के मेंबर से मशवरा किया जाए, चाहे फिर बात लीडर ही की मानी जाए क्योंकि उसके पास जवाबदेही ज़्यादा होती है, लेकिन इस तरह दूसरे लोगों में कॉन्फिडेंस भी आता है और फिर लीडर के बाद के हालात के लिए वो उसकी ज़िंदगी में ही तैयार हो जाते हैं। सहाबा ने आपको मशवरा क्या दिया? आपने लोगों से पहले ये पूछा कि आप क्या सोचते हैं कि ये लोग जो कुरैश की मदद करने के लिए तैयार हो गए हैं, क्या हम इनके घर वालों पर टूट पड़े और कब्ज़ा कर लें? इसके बाद अगर वो खामोश बैठते हैं तो इस हालत में खामोश बैठते हैं कि जंग की मार और गम और दुख से दो चार हो चुके होंगे, और आते हैं तो भी इस हालत में कि अल्लाह इनकी गर्दन तोड़ चुका होगा। यानी एक ऑप्शन है कि जो हमारे खिलाफ़ उठ रहे हैं हम भी उनसे फिर अपना बचाव करें, या दूसरी बात यह है कि हम खाना काबा का रुख करें और जो रास्ते में हायल हो उसे लड़ाई करें। इस पर अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि जो अल्लाह और उसका रसूल करे, यानी अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं, हम उमरा करने आए हैं, किसी से लड़ने नहीं आए, जो भी हमारे और बैतुल्ला के दरमियान हायल होगा उससे फिर लड़ाई करेंगे। और अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, सफ़र जारी रहा। यहाँ देखिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक की राय भी बहुत ही अहम है कि उन्होंने कितने खूबसूरत तरीके से अपनी मर्ज़ी बता दी कि नहीं हम इनसे नहीं लड़ेंगे। ये बहुत खूबसूरत मैनर होता है, बस दफ़ा जो बात आपको कही जा रही होती है वो कहने वाला अपनी सोच के मुताबिक कर रहा होता है, तो आप उस बात को इस तरीके से बजाय इसके कि मुंह फट होके कह दें नहीं नहीं ये नहीं करना ये गलत है, मुबहम बात ऐसा कर लें, वैसे ठीक ये था, वैसे ये भी ठीक है, लेकिन ये भी ठीक है। वैसे तो अपनी राय देने में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए इंसान को, लेकिन अंदाज़ बहरहाल बहुत अदब का होना चाहिए। किसी की बात को खामोश रह कर के, जिन्हें हम इज़्ज़त बड़ी करते हैं, हम रिस्पेक्ट बड़ी करते हैं, हम बोलते नहीं, बोल नहीं सकते, और दिल में कुछ और रखना, गुनगुन करना, ये बहुत बड़ी खयानत होती है। अच्छे लोग वो होते हैं जो जिस बात को सोचें देखें उसको बहुत खूबसूरत तरीके से पहुंचा दें, और अच्छे लीडर्स वो होते हैं जो हर एक की राय का खैर मकदम करें, ना ये सोच लें कि हमने जो कह दिया बस वही पत्थर पे लकीर है, और ना हर आने जाने वाले की बात को सुनकर अपनी राय को बदले। अबू बकर की राय चूंकि बहुत ज़्यादा मुनासिब थी, अल्लाह के नबी ने इस पर अमल किया। कुरैश को अल्लाह के नबी की आमद की खबर हुई, एक मजलिस शुरा मुनक़द हुई, उसमें तय हुआ कि मुसलमानों को बैतुल्ला से रोका जाए। अल्लाह के नबी ने लश्करों से कतरा कर अपना सफ़र जारी रखा तो बनी काब के एक शख्स ने आकर आपको इत्तला दी कि कुरैश ने जी तुबा के मुकाम पर पड़ाव डाल रखा है और खालिद बिन वलीद 200 सवारों का दस्ता लेकर कुराउल गमीम में तैयार खड़े हैं। ये एक जगह का नाम है, मक्का जाने वाली मरकज़ी और बिल्कुल मेन रोड जो है उस पर यह जगह वाक़ है। और याद रखिए कि खालिद बिन वलीद अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने मुसलमानों को रोकने की कोशिश की, उन्होंने अपने सवारों के लिए ऐसी जगह रखी कि जहाँ से दोनों फरीक एक दूसरे को देख रहे थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जोहर की नमाज में जब ये देखा कि मुसलमान रुकू और सजदे कर रहे हैं तो कहने लगे ओहो ये लोग तो गाफिल थे, हमने हमला कर दिया होता तो आज हम जीत चुके होते। लोगों ने कहा नहीं कोई बात नहीं, अभी इसके बाद एक ऐसी नमाज आने वाली है कि जो मुसलमानों को अपने घरों और बच्चों से भी प्यारी है, लिहाजा अगली नमाज के अंदर मुसलमानों पर हमला करेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगली नमाज आती सलातुल खौफ का हुक्म आ गया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ फिर सलातुल खौफ के तरीके से नमाज़ पढ़ाई और इस तरह हज़रत खालिद के हाथ से ये मौका जाता रहा। मुझे हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु पे बहुत मोहब्बत आती है, मैं सोचती हूँ कि ये उन लोगों में से हैं कि जो अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम से दूर गुजारते हैं, जवानी ज़ाया की, लड़कपन ज़ाया किया, और जब बिल्कुल अपनी ज़िंदगी का आखिर हुआ तो अल्लाह हिदायत दे। कभी भी आपने किसी ऐसे शख्स को देखा हो? रोना बहुत आता है उनको, हाय ज़िंदगी ज़ाया कर दी, इतने गुनाह किए, सब किया, लेकिन फिर शुक्र ही होता है कि हमें अल्लाह ने मौका दिया। और फिर वो अपनी बाकी ज़िंदगी बिल्कुल उस ख्याल के साथ लगा देते हैं कि अब हमने बस अपनी गुनाहों के कफ़ारे देने हैं। तो ये बहुत बड़ी हिकमत होती है अल्लाह की। कुछ लोगों को पहले कुफर की तरफ से लाता है, फिर बाद में वो इस्लाम पे आते हैं और बहुत कुछ करते हैं। अगर आप खालिद बिन वलीद के बारे में कुछ सुनना चाहें, एक अलग से लेक्चर है पूरा रिकॉर्डेड, तो अगर आपको मिले कभी मौका तो ज़रूर सुनिएगा कि ये गाजी, ये तेरे पुरअसरार बंदे, कैसे वो लोग थे कि जिनको देख कर पहाड़ भी सिमट जाते थे। बहरहाल, नबी सल्लम बहुत ज़्यादा हालात पर नबज़ रखने वाले थे, उनको सब पता होता था कि इधर उधर क्या हो रहा है। अपने साथियों पे भी नज़र रखते थे, दुश्मनों पे भी नज़र रखते थे। और एक अच्छा लीडर बेदार मगज़ होता है, वो मासूम तो हो सकता है लेकिन वो बिल्कुल बेवकूफ़ और भोला नहीं होता, जीरक होता है और आप कह सकते हैं कयस होता है। अल्लाह के नबी सल्लम को पता था कि दुश्मनों में बात तो निकल चुकी है, चुनाचे जो मेन रोड था कुराउल गमीम का, उसको आपने छोड़ दिया और एक दूसरे रास्ते में जो थोड़ा मुश्किल था, अंदर अंदर से गुजर के जाता था पहाड़ी घाटियों के अंदर से, वो ले लिया। देखिए, इसमें फिर एक अमल की बात है, आसान रास्ते छोड़ दीजिए अगर दुश्मन के हाथों में आने का ख़तरा है, थोड़ा मुश्किल रास्ता इख्तियार कर लें, थोड़ा सा काम को इधर से उधर कर लें, लेकिन थोड़ा एहतियात रखिए। जो लोग मुहतात रहकर काम करते हैं, अल्लाह ताला फिर उनको उसमें भी कामयाबी दे देता है। बस लोग बहुत पम्प एंड शो चाहते हैं, हम दिखाएंगे अपना आप, हम गरज के दिखाएंगे, हम देखते हैं आज हमारे रास्ते में कौन आता है, तो कोई फ़ायदा नहीं। कोई दुनिया जो है मैदान जंग नहीं है, कोई अखाड़ा नहीं है। काम करने वालों को जब एक रास्ते से रोका जाता है तो वो कोई दूसरा रास्ता ले लेते हैं। दुआ कीजिए कि काम करते रहें, रास्ता थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है लेकिन मकसद नहीं बदलना चाहिए। अगर होते नहीं भी वापस चलते हैं, मदीना चलते हैं, चलो मक्का नहीं जाते, ताइफ चले जाते हैं, नहीं, मंजिल नहीं छोड़ी, रास्ता बहरहाल थोड़ा बहुत इधर उधर किया, थोड़ा सा दाईं तरफ कतरा कर हम्श के दरमियान से गुजरते हुए एक ऐसे रास्ते पर चले जो सनीयतुल मरार पर चलता था। सनीयतुल मरार से हुदैबिया की तरफ गए और हुदैबिया मक्का के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में वाक़े है। इस रास्ते को इख्तियार करने का एक फ़ायदा तो ये हुआ कि कुराउल गमीम का वो मरकज़ी हिस्सा जो तनीम से गुजर कर हरम तक जाता था, तनीम वो जगह जहाँ से हरम की हद शुरू हो जाती है और जिस पर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो का रिसाला मुतय्यन था, वो बाईं तरफ चला गया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हो ने मुसलमानों के गर्दोगुबार को देखा, जब ये महसूस किया कि उन्होंने तो रास्ता बदल दिया, तो उन्होंने भी पीछा किया, अपने घोड़े को एड़ लगाई, कुरैश को इस नई सूरत हाल के ख़तरे से आगाह करने के लिए भागम भाग मक्का पहुँचे, क्योंकि उनकी तो सारी कोशिशें और सारी तैयारियाँ जो थी वो पीछे रह गईं। चुनाचे वो मक्का पहुँचे ताकि मौजूदा जो हालात हैं उसके बारे में बात कर सकें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सफ़र जारी रखा, सनीयतुल मरार पहुँचे तो ऊँटनी बैठ गई, लोगों ने कहा हल हल, उठ उठ, यानी जैसे कि ऊँटनी को हांकते हैं, लेकिन वो बैठी रही। लोगों ने कहा नहीं, कुस्वा तो अड़ गई है। आपने फरमाया कुस्वा अड़ी नहीं है और ना ये इसकी आदत है, बल्कि इसे इस हस्ती ने रोक रखा है जिसने हाथी को रोका था। कौन सा हाथी? अलम तरकई फ़फ़ाल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील। जी, अब्रहा के लश्करों की तरफ आपका इशारा था। और यहाँ से आपको बंदे मोमिन की एक बात दिखेगी कि लोग जिस ज़ाहरी चीज़ को देकर कमेंट दे देते हैं ना, एक समझदार इंसान उसके पीछे अल्लाह की हिकमत ढूंढ रहा होता है कि आखिर ये ऊँटनी बैठी है तो क्यों बैठी है, और ये रोज़ नहीं ऐसे होती, आज क्यों हुई, यकीनन इसमें कोई खैर होगी। इसके बाद आपने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये लोग किसी भी ऐसे मामले का मुतालबा नहीं करेंगे जिसमें अल्लाह की हुरमतों की ताज़ीम कर रहे हों, लेकिन मैं इसे ज़रूर तस्लीम कर लूँगा। अल्लाह अकबर। यानी आप देखिए, यहाँ से ही अल्लाह के नबी ने अपनी टीम को, अपने लश्कर को ख़बर दे दी कि अगर वो अल्लाह की हुरमतों को नहीं तोड़ेंगे तो मैं मान लूँगा, जो मुतालबा वो करेंगे मैं मान लूँगा। यहाँ से आप देखेंगे कि अब लीडर की कोई और राय हो रही है, लेकिन जो आम लोग थे उनको देखने में कुछ और सही लग रहा है, लेकिन किस खूबसूरत तरीके से मैनेज किया जाएगा इस चीज़ को। आपने अपनी ऊँटनी को थोड़ा सा डांटा तो वो उछल कर खड़ी हो गई, फिर आपने रास्ते में थोड़ी सी तब्दीली की और हुदैबिया का जो दूर का किनारा था वहाँ एक चश्मा था, आपने वहाँ पड़ाव डाला, थोड़ा सा पानी था, उसे लोग ज़रा ज़रा सा ले रहे थे, چند ہی لمحوں میں سارا پانی ختم ہو گیا۔ لوگوں نے اللہ کے نبی سے شکایت کی کہ پیاس لگی ہے۔ آپ نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور حکم دیا کہ چشمے میں ڈال دے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا اور اس کے بعد چشمے سے مسلسل پانی ابلتا رہا، یہاں تک کہ تمام لوگ آسودہ ہو کر واپس چلے گئے۔ یہ دیکھیے برکتیں، جنگیں ہوں، فتوحات ہوں، سفر ہو، بہت کچھ ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیجئے کہ نبیوں کی زندگی ہو، اللہ کے پیاروں کی زندگی ہو، اسپرچول فورسز کا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کردار ہمیں ہمیشہ دکھے گا۔ اس پہ پھر کبھی الگ سے بھی ہم بات کر سکتے ہیں تو کریں گے، لیکن آپ اس کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے غزوات دیکھیں گے، اس میں ہر غزوے میں کوئی نہ کوئی نشانی ضرور ہوئی۔ جیسے غزوہ خندق میں حضرت جابر کے تھوڑے سے جو میں برکت ڈل گئی، یہاں آپ دیکھیے کہ ایک تھوڑا سا پانی تھا وہ بھر گیا، خندق میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے راستے میں پتھر آئے ٹوٹے۔ تو ایک چھوٹی سی بات یاد رکھیے گا، فتح اور نصرت چاہے میدان جنگ میں ہو یا میدان عمل میں ہو، اس کا بہت گہرا ربط ہے بندے کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے ساتھ۔ اسپرچولی جو انسان جتنا اسٹرانگ ہوگا، اللہ سے تعلق رکھے گا، اللہ پہ توکل کرے گا، اتنی اللہ کی مدد زیادہ آئے گی۔ اور جو مخلوق میں الجھ جاتا ہے نا، اللہ اس کو مخلوق کے بس کا کر دیتا ہے۔ وہی کام جو لوگ کئی کئی سال کی کوشش اور محنت سے نہیں کریں گے نا، ایک اللہ کا بندہ اللہ پر ایمان اور توکل اور یقین کی بدولت وہ کام کروا لیتا ہے۔ تو دعا کیجئے کہ ہم روحانی طور پر اللہ کے قریب ہوں، اور یہ آ نہیں سکتا جب تک کہ ہماری زندگی قرآن اور سنت کے مطابق نہ ہو۔ بعض لوگوں نے اسپرچویلٹی یا روحانیت اور تصوف کے نام پر بھی پھر اور دوسری راہ لے لی، پھر وہ کہتے ہیں جی شریعت کو چھوڑو ایک طرف اور رسول کی باتیں دوسری طرف، ہم اپنی مرضی کے کام کرتے کراتے ہیں۔ ایسی کسی نے ایک دفعہ بڑی لمبی چوڑی کہانی سنائی کہ فلاں جگہ ایک بزرگ ہیں اور میں ان کے پاس گئی، پھر میں ان کے بستر پہ سوئی تو مجھے ہر چیز سرخ دکھی، پہاڑ بھی ایسے تھے، یہ تھا، پھر میری آنکھ کھل گئی۔ پھر میں نے ان سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں جی، یہ بابا جی کا رنگ ہے اور یہ ایسے ہوگا۔ عجیب و غریب کہانی، ایسے مجھے لگے جیسے میں الف لیلوی کہانی سن رہی ہوں، اور پھر آپ کو نہیں پتا یہ ہوا وہ ہوا، پھر مجھے اپنے پاس کوئی دکھا، یعنی بالکل جیسے انسان اپنے ذہن کو چلائے ویسے کام کرنے لگنے والی کیفیت لگی۔ تو شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر آپ روحانیت حاصل کرتے ہیں تو یہ معراج ہے، نماز کی بھی اور ہر عبادت کی۔ صدقہ خیرات ہو یا اللہ کے ساتھ تعلق ہو، بندوں سے بات کریں یا اپنے حقوق کو پورا کریں، آپ اللہ کو بیچ میں لے آئیے، پھر اللہ آپ کے کاموں کو آسان کر دے گا اپنی توفیق سے۔ بہرحال چلتے ہیں، ادھر واپس ہوا کیا کہ لوگوں نے پانی پی لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہوئے۔ تو ایک شخص بدیل بن ورقہ قبیلہ خزایہ سے تھا، اپنے قبیلے خزایہ کے چند افراد کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس آیا۔ تہامہ شہر کے باشندوں میں یہی قبیلہ خزایہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویل وشر یعنی خیر خواہ تھا۔ بدیل نے کہا کہ میں کعب بن لوئی کو دیکھ کر آ رہا ہوں اور وہ حدیبیہ کا جو کنواں ہے اس کے پاس پڑاؤ ڈال کے کھڑا ہے، اس کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی ہیں، وہ اور آپ سے لڑنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا ارادہ کیا میں۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ پھر کیسے دشمنوں میں سے ہی ایسے لوگ پیدا کر دیتا ہے جو آپ کی حمایت کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ بندے کی مدد کرے، اللہ نہ ہاتھ چھوڑے نا تو بندے کو کوئی پیچھے نہیں ڈال سکتا۔ خیر، اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے، قریش کو لڑائیوں نے تھکا دیا ہے اور وہ سخت ضرر پہنچایا، اس لیے اگر وہ چاہیں تو ان سے ایک مدت طے کر لوں اور وہ میرے اور لوگوں کے درمیان سے ہٹ جائیں، پھر میرے غلبے کی صورت میں جس چیز میں لوگ داخل ہوں گے، مراد یہ ہے کہ میری بات اگر مان لیں گے تو اس میں وہ بھی داخل ہو جائیں گے، ورنہ مدت کے اختتام تک وہ تازہ دم تو ہو ہی چکے ہوں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ دشمن کے لیے، یعنی پیچھے کمر توڑ جنگیں تو ہو ہی چکی تھی نا سن 5 ہجری تک، اس کی طرف اشارہ۔ تو یہ آپشن لے لیں، تھوڑا سا بریک لے لیں، ہمارا راستہ چھوڑ دیں، ہم ان کو بھی کچھ نہیں کہتے اور ایک خاص وقت تک جنگ بھی نہیں ہوگی، فریش ہو جائیں گے، پھر دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے۔ اور اگر یہ آپشن قبول نہیں تو لڑائی کے سوا کچھ منظور نہیں، تو ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنے دین کے معاملے میں ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک میری گردن جدا نہ ہو جائے یا جب تک پھر اللہ اپنی بات کو نافذ نہ کر دے۔ یہ کمٹمنٹ چاہیے۔ دیکھیے ہم کیوں ہارنے لگتے ہیں، ہمارے اوپر حالات کیوں تنگ لگتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا مورائل ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ آپ آزما کے دیکھ لیجئے، आप जो काम शौक से करते हैं, एक मिशन समझ के करते हैं ना, आप रात 12 बजे भी करके थकते नहीं हैं, कहते नहीं आज मैंने घर साफ करके सोना है, आज मैंने ये खाना पका के सोना है, आज मैंने ये होमवर्क पूरा करके सोना है, और बाज़ब आप सारा दिन कसलमंदी में, इधर से इधर, उधर से उधर, इधर से उधर, ढीले ढाले काम नहीं हो पाता आपसे, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो अल्लाह से मांगने की है, कमिटमेंट। जो होगा फिर देखेंगे जी, कर लो जो करना है। इस तरीके से अल्लाह के नबी की सूरत में बेहतरीन जर्नैल दिखते हैं कि इसकी मिसाल नहीं मिलती तारीख में। आपकी आवाज़ में इतना जोश और इतनी सच्चाई और कर गुजरने वाली कैफियत थी कि बुदैल ने कहा कि आप जो कुछ कह रहे हैं मैं इसको कुरैश तक पहुंचा दूंगा। इसके बाद वो कुरैश के पास पहुंचा और बोला कि मैं इन साहिब के पास से आया हूँ, मैंने इनसे एक बात सुनी है, अगर चाहो तो पेश कर दूँ। लेकिन वो तो अपनी ताकत के नशे में थे ना, उनको पता था हम बड़ी जमात हैं, हम अपने घर में बैठे हुए हैं, ये तो बाहर से आए हैं, नौवारद हैं ये लोग। तकबर भी होता है ना कि ये हमारी टेरिटरी है, ये हमारा जोन है। बेवकूफ़ी की, कहने लगे हमें नहीं ज़रूरत कि तुम हमसे इनके बारे में कोई बात करो, ये क्या हम उनको कुछ नहीं समझते। लेकिन जो लोग समझ बूझ रखते थे उन्होंने कहा नहीं नहीं सुनाओ भाई, क्या बात है, सुननी तो चाहिए, यहाँ से फिर अमल की बात नोट कीजिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं मैं सुनने को तैयार नहीं, मैं एक बात नहीं करूँगी। बस दफ़ा आप देखिए कि ज़िंदगी में कहीं इंसानी ताल्लुकात में बिगाड़ आने लगता है, रिश्ते टूटने लगते हैं, सगे भाई बहन में कुछ ना कुछ मैल आ जाता है। बात सुनिए, अगले को ज़रूर मौका दें। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, कभी बिगाड़ आता है, मिसाल है कि शौहर बीवी का मामला है, अब बीवी रूठ के मैके आ गई, शौहर दूर है, फिर वो बेचारे कोशिश करते हैं, अच्छा भाई हमें अपनी बात कहनी है, बताना है, नहीं जी बस ख़त्म हो गई, हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे। नहीं, 2 मिनट दीजिए, 10 मिनट दीजिए, लड़के को बुलाइए, उससे अकेले में बात कीजिए, लड़की लड़के को साथ बिठाइए, कोई ख़ानदान का बड़ा बीच में आए। लेकिन ये जो एटीट्यूड है ना कि मैंने सुनना ही नहीं, ये इंसान के अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होती है। तो जो समझदार थे उन्होंने कहा कि भाई बताओ, और हमेशा से वक्तों में सोचिए कि सुनने से क्या हमारा बिगड़ जाएगा, शायद कोई अच्छी ऑप्शन हो। अगर गौर करें ना तो जिसके अंदर तकब्बुर होता है ना, बड़ाई का एहसास होता है, वो दूसरे की बात नहीं सुनता। तो खैर जब उन्होंने कहा सुनाओ, तो बुदैल ने कहा कि मैंने इन्हें ये और ये बात कहते सुने, जो बात हुई थी वो अल्लाह के नबी की इनको बता दी। इस पर कुरैश ने मकरस बिन खफ्स को भेजा, उसे देखकर अल्लाह के नबी ने दूर से बता दिया कि ये बदहद शख्स है, जब इसने आपके पास आकर गुफ्तगू की आपने इससे वही बात कही जो बुदैल और उसके साथियों से कही थी। इसने वापस जाकर कुरैश को पूरी बात से बाखबर कर दिया। इसके बाद हलीस बिन अलकमा नामी बनू कनाना के एक शख्स ने कहा कि मुझे इनके पास जाने दो। लोगों ने कहा जाओ। जब वो आया तो अल्लाह के नबी सल्लम ने सहाबा से फरमाया ये फलां शख्स है, ये ऐसी कौम से ताल्लुक रखता है जो हदी के जानवरों का बड़ा एहतराम करती हैं, लिहाजा जानवरों को खड़ा कर दो। यहाँ फिर एक लर्निंग पॉइंट है, लीडर लोगों को देखकर बात करता है। देखिए पहले शख्स के बारे में आपने ये नहीं कहा, इसके लिए कहा, इसे एक तो आपकी समझ पता चलती है, दीनदार होने का मतलब बिल्कुल भोला और बुद्धू होना नहीं होता। नज़र रखिए कौन किस चीज़ से खुश होता है, कुछ लोग तारीफ़ से खुश होते हैं, कुछ तनकीद से खुश होते हैं, किसी बात को फौरी जवाब देना होता है, किसी को नहीं देना अकल की बात होती है। एक ही टोन में बोलते जाना और हर एक से एक ही रवैया अख्तियार कर लेना, ये बिल्कुल दुरुस्त तरीका नहीं होता। और इसका वीक पॉइंट जो था अल्लाह के नबी ने वही सामने कर दिया कि जानवर खड़े कर दो। सहाबा ने जानवरों को खड़ा कर दिया, खुद भी लब्बैक पुकारते हुए इसका इस्तकबाल किया। इस शख्स ने जब ये कैफियत देखी तो बोला सुभान अल्लाह, इन लोगों को बैतुल्लाह से रोकना हरगिज़ मुनासिब नहीं, और वहीं से अपने साथियों के पास वापस चला गया। यह नोट कीजिएगा, बात करने की भी नौबत नहीं आती जब बंदा समझदारी से लोगों को डील करे। अच्छा बात कहते हैं जी 1 घंटा सर खपाया फिर भी नहीं माने, तो मैं कहती हूँ कि आपने गलती की, आपको 1 घंटा नहीं थी बात करनी, सिर्फ 5 मिनट बात करती, नेक्स्ट टाइम आप ना बात कीजिएगा। कई ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बात की वजह से बात को और बिगाड़ देते हैं। कुछ लोग 2 जुमलों में बात करते हैं, मौका देखिए। अच्छा वो कहेंगे नहीं जी आपने खुद ही कहा था तफसील से बात करें। भाई लेकिन सर ये भी तो कहा था ना कि मौका देखिएगा, अगला सुनने को तैयार भी है कि नहीं, उसकी टोन समझिए। तो अल्लाह से बहुत हिकमत मांगने की ज़रूरत है हम सबको, हिकमत की वजह से अल्लाह ताला वाकई वो असरार और रमूज खोल देता है जो आम तौर पे नहीं दिखते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक छोटी सी स्ट्रेटजी कि जानवरों को खड़ा कर दो और लोगों को ये श्योर कर दो कि हम उम्रे के लिए आए हैं, लगड़ने के लिए नहीं आए, इसने वो पॉइंट सारा उन पे वाज़े कर दिया जो हो सकता है कई दिन की मीटिंग्स और कितने मुबहसों और बहस के बाद भी नहीं होना था। तो यहाँ से सीखने की बात यही है कि दूसरे फरीक की नफ्सियात पहचानी है, फिर उसके मुताबिक बात कीजिए। तो बहुत नहीं बोलना पड़ेगा, कम बोल के भी समझ आ जाएगी अगले को कि आपने बात क्या कही है। खैर वापस गया, कहने लगा देखो लोगो, मैंने हदी के जानवर देखे हैं, इनके गलों में कलादे हैं, इनके कोहान चीरे हुए हैं, मतलब ये कि हर सिम्टम वही है जो उम्रे के लिए आने वाले की होती है, तो मैं तो ये नहीं समझता मुनासिब कि इनको बैतुल्ला से रोका जाए। इस पर फिर कुरैश और उस शख्स में कुछ ऐसी बातें हुई कि वो गुस्से में आ गया। नोट कीजिएगा, बजाय इसके कि अल्लाह के नबी से उलझता, अपने साथियों से उलझा। अल्लाह हमें ऐसी हिकमतें अता करें बात करने की और मामले करने की। ऐसे वक्त पे उरवा बिन मसूद सकफ़ी ने मुदाखलत की, बोला इस शख्स मोहम्मद सल्लम ने तुम्हारे सामने एक अच्छी तजवीज़ पेश की है, इसको कबूल कर लो और मुझे इनके पास जाने दो। लोगों ने कहा जाओ, चुनाचे वो आपके पास हाजिर हुआ, बातचीत शुरू हुई। अल्लाह के नबी ने इससे भी वही बात कही जो बुदैल से कही, या फिर नोट कीजिएगा एक अमल का नुक्ता कि बात बदलनी नहीं चाहिए वरना बेइज्जती होगी। बस दफ़ा जब इस तरह के झगड़े और लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं ना ख़ानदानों में या इदारों में, या जैसे कि ये खिदाबिया की सिचुएशन है, तो जब आप हर दफ़ा अपनी स्टेटमेंट चेंज करेंगे ना, तो आप हर एक की नज़रों में बुरे हो जाएंगे। बस लोग बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं, कोई आया तो ये कह दिया जी हम तो सुलह चाहते हैं, वो चला गया। दूसरा आया तो कहा हम तो इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। तीसरा आया तो कोई एक जज्बाती नारा लगा दिया, तो ये दुरुस्त नहीं है। सच और हक एक ही होता है और इसी में इज्जत होती है। जब सारे जाके कहेंगे कि एक ही बात वो कह रहा है, तो अगले को भी आपकी बात समझ आएगी, वरना आप और ताने सुनेंगे कि अच्छा जी बात बड़ी बदल लेते हैं आप। इसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी। इस पर उरवा ने खुद कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए कि अगर आपने अपनी कौम का सिफाया कर भी दिया, तो क्या आपने आपसे पहले किसी अरब के बारे में सुना है किसने अपनी कौम का सफाया कर दिया? इनका ख्याल क्या था कि अल्लाह के नबी हमें मारने आए हैं। अच्छा यहाँ रोब देखिए, कैसे सच्चे ईमान का रोब अल्लाह डाल देता है दिलों में। मुसलमान बेचारे उम्रे की नीयत से आए, अपने मदर लैंड को देखने आए, मोहब्बत में आए, और दुश्मन क्या सोच रहे हैं जी हमें मारने आए। बिल्कुल आज भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग उस वक्त होने लगती है जब कोई दीनी गिरोह कोई काम करना चाहे अपनी हैसियत, अपनी सलाहियत और अपने इसबाब की रोशनी में। उनकी नीयत बिल्कुल कोई मुकाबले की नहीं, उनकी नीयत बिल्कुल किसी किस्म के टकराव की नहीं, लेकिन दूसरे लोग क्या सोचते हैं ये हमें हराने आए हैं, ये हमारे मुकाबले पे ये काम कर रहे हैं। इन्होंने ये काम शुरू किया ना, ये तो हमारा आइडिया था, ये इन्होंने ले लिया, तो ये बिल्कुल नॉनसेंस किस्म की बात होती है। तो कहने लगा कि देखो आप अपनी कौम को ख़त्म ना करें, और अगर दूसरी सूरत हाल पेश आई तो अल्लाह की कसम ऐसे चेहरे और ऐसे उबाश लोगों को देख रहा हूँ जो इसी लायक हैं कि आपको छोड़कर भाग जाएं। यानी इसने तैश दिलाया नऊज़ुबिल्लाह कि आपके साथ जो साथी हैं वो ऐसे किरदार के हामिल हैं। अबू बकर सिद्दीक को गुस्सा आया, उन्होंने थोड़ी सी उनको अपनी ज़ुबान में गाली दे दी, नबी सल्लम को छोड़कर हम भागेंगे। उरवा ने कहा ये कौन है? लोगों ने कहा अबू बकर है। इसने अबू बकर को मुखातिब करके कहा देखो ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। अच्छा यहाँ देखिएगा कि अल्लाह ताला को मानते थे ना, तभी ये कसम खा रहे हैं। अगर ऐसी बात ना होती कि तुमने मुझ पर एक एहसान किया था और मैंने इसका बदला नहीं दिया, तो मैं यकीनन तुम्हारी इस बात का जवाब देता। यहाँ से देखिए कि अरबों में ये एटिकेट्स फिर भी थे कि किसी का एहसान मानना। आज की कौमों और आज के मुल्कों में तो ये भी एटिकेट्स नहीं रहे। एक मौके पे किसी से गठजोड़ करते हैं तो दूसरे मौके पे उसी को छोड़ के दूसरे के साथ देने लग जाते हैं। बहरहाल उरवा जब नबी सल्लम से बात कर रहे थे तो बार बार आपकी दाढ़ी को पकड़ लेते। मुगिरा बिन शोभा ने ये बात देखी, उनको अच्छा नहीं लगा। ये नबी सल्लम के बिल्कुल सर के पास खड़े थे, हाथ में तलवार थी और सर पर हौद पहने हुए थे। उरवा जब अल्लाह के नबी की दाढ़ी पर हाथ बढ़ाता तो तलवार का दस्ता इसके हाथ पर मारते और कहते अपना हाथ अल्लाह के नबी की दाढ़ी से परे रखो। आखिर उरवा ने अपना सर उठाया, बोले ये कौन है? लोगों ने कहा मुगीरा बिन शोभा हैं। इस पर इसने कहा ओ बदहद, क्या मैं तेरी बदहदी के सिलसिले में दौड़ धूप नहीं कर रहा हूँ? कुछ वाक़ ऐसे था कि जाहिलियत में हज़रत मुगीरा कुछ लोगों के साथ थे, फिर इन्हें कत्ल करके इनका माल ले भागे थे। अब ये इस्लाम से पहले की बात थी, अब यहाँ आके मुसलमान हो गए। इस पर अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि मैं इस्लाम तो कबूल कर लेता हूँ लेकिन माल से मेरा कोई वास्ता नहीं। इस मामले में उरवा को दौड़ धूप की वजह ये थी कि हज़रत मुगीरा उनके भतीजे थे। इससे पता क्या चलता है कि बस दफ़ा इंसान से एक अच्छा काम भी होता है और एक अच्छा काम नहीं भी होता, तो अच्छे काम की वजह से उसका बुरा काम और बुरे काम की वजह से अच्छा काम मुतासिर होता है। खैर, इसके बाद उरवा नबी सल्लम के साथ सहाबा कराम की मोहब्बत को देखने लगे, फिर वापस आकर अपने साथियों से कहने लगे, बाखुदा मैं कैसरो किसरा और निजाशी जैसे बादशाहों के पास जा चुका हूँ, बाखुदा मैंने किसी बादशाह को नहीं देखा कि उसके साथी इतनी ताज़ीम करते हों जितनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी मोहम्मद की ताज़ीम करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की कसम, वो खंखार कर थूकते थे तो किसी न किसी आदमी के हाथ पर पड़ता था और वो शख्स इसे अपने चेहरे और जिस्म पर मल लेता था, और जब वो कोई हुक्म देते थे तो वो इसकी बजावरी के लिए सब दौड़ पड़ते थे, और जब वुज़ू करते थे तो मालूम होता था कि इसके वुज़ू के पानी के लिए लोग लड़ पड़ेंगे, और जब कोई बात बोलते तो सब अपनी आवाज़ें पस्त कर लेते, और ताज़ीम की वजह से इन्हें भरपूर नज़र से देखते भी ना थे। उन्होंने कहा, तुम पर एक अच्छी तजवीज़ पेश है, लिहाजा इसे कबूल कर लो। इस कमेंट के ऊपर आप ये नोट डाल लीजिए कि असल गवाही वो है जो आपका दुश्मन आपके लिए दे। अरब लोग कहते हैं कि किसी इंसान को अच्छा ना मानो जब तक कि उसका मुखालिफ या उसका दुश्मन उसके बारे में अच्छी बात ना कह दे। उरवा की यह गुफ्तगू हकीकत में अल्लाह के नबी के लिए क्रेडिट था। अच्छा, आपको उरवा बिन मसूद से कोई और सहाबी याद आए? उरवा बिन मसूद, अब्दुल्ला बिन मसूद, फ़र्क देख लीजिए कैसे इंसान होते हैं, मुख्तलिफ काम कर जाते हैं मुख्तलिफ लोग।
इंशाल्लाह ताला यहाँ से हम आगे कल शुरू करेंगे। अल्लाह ताला हमारी इसलाह फरमा दे, गलतियों की इसलाह कर दे। सुभान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ती अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।